स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभुष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट अपने प्रिय मित्र और परिवार के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि यूहन्ना ने समुद्र से एक पशु को निकलते हुए देखा। वह एक भयानक पशु था और अजगर अर्थात शैतान उस पशु को ख्रिस्त विरोधी का अपना सामर्थ्य और अधिकार दे दिया। वह पशु लगभग मर ही गया था परंतु बच गया। यह देख सब लोग अर्थात वे लोग जिनके नाम मेमने की पुस्तक में नहीं थे उसकी पूजा करने लगे। वह एक अंधकारमय समय होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कलीसिया उस समय वहां नहीं होगी। हमें ख्रिस्त विरोधी के आगमन की नहीं परंतु प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करना है। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे वन पशु और अवहेलना का अधिकार नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, जिसके कान हो वह सुने, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर के वचन के श्रद्धापूर्ण कथनों में से एक है, जिसके कान हो। यह निमंत्रण 3 बार दोहराया गया है कि जिसके कान हो वह किसी भी समय किसी भी युग में परमेश्वर के वचन को सुन ले। रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 17 पद में पौलुस कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जिसके कान हो वह सुने, यहां फिर स्वतंत्र इच्छा है और चुनाव का संयोग है। जिसके से अर्थ हर एक मनुष्य के लिए है, क्योंकि कान सबके पास होते हैं परंतु कुछ लोग कान होते हुए भी सुन नहीं सकते। ये लोग सुन ही नहीं सकते, वे कभी नहीं सुनते हैं। मेरा एक वृद्ध पड़ोसी था, उसकी पत्नी बहुत बात करती थी। जब वह काम करने के लिए बाहर जाता था तब वह सुनने की मशीन कान से निकाल देता था। मुझे बाद में पता चला कि वह ऐसा क्यों करता था। एक दिन वह अपने एक पेड़ की छटनी कर रहा था कि उसकी पत्नी ने आकर 5 मिनट तक उससे बातें की, परंतु अकस्मात ही उसने देखा कि उसके पति ने कान में मशीन नहीं लगाई हुई थी। उसने कहा, तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, और वह भीतर चली गई। वह व्यक्ति पेड़ छांटने का काम करता रहा। यही तो वह चाहता था। वह बाहर आया था कि पेड़ को छांटे, ना कि किसी से बातें करें। ऐसे ही अनेक मनुष्य हैं जिनके कानों में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मशीन नहीं लगी है। वे वचन सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इस देश में हर एक मनुष्य हमारे रेडियो कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर का वचन सुने, परंतु मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेगा। मैं जानता हूं कि जिसके कान हो वह सुनेगा, जिसके अर्थात यह स्वतंत्र इच्छा दर्शाता है, और कान हो चुनाव को दर्शाता है। और इस प्रकार परमेश्वर इन दो सत्यों को संयोजित करता है। आगे कहता है, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। यूहन्ना जो कह रहा है वह आपके और मेरे लिए नहीं है। आशा करता हूं कि यह आपके लिए नहीं है। यह तो मैं जानता हूं कि यह मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि अध्याय 4 से आरंभ करके प्रकाशित वाक्य भविष्य की घटनाओं की चर्चा करता है जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद की है। कलीसिया अर्थात नया जन्म प्राप्त विश्वासी उस समय पृथ्वी पर नहीं होंगे। यूहन्ना परमेश्वर के उन भक्तों से कह रहा है जो उस समय पृथ्वी पर होंगे। स्मरण रखें कि महाक्लेश के समय ख्रिस्त विरोधी विश्व शासक एक निरंकुश शासक होगा। उसकी अनुमति के बिना मनुष्य न तो खरीद पाएगा और न ही कुछ बेच पाएगा। उसकी अनुमति के बिना किसी का यात्रा करना भी संभव नहीं होगा। वह संसार पर ऐसा निरंकुश शासन करेगा जैसा आज तक किसी ने कभी नहीं किया। परमेश्वर अपने भक्तों से कहता है, उसका विरोध नहीं करना, क्योंकि पहले तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात है, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है, अर्थात उस युग के भक्तों का धीरज एवं विश्वास। यदि आप महाक्लेश के युग में हैं तो आपको धीरज और विश्वास के साथ उस युग का हर एक भयानक कष्ट सहना होगा जो परमेश्वर की संतानों पर भी आएगा। परमेश्वर इस संसार से अपना हाथ खींच लेगा और शैतान को अधिकार दे देगा। आज पवित्र आत्मा संसार में है और वह शैतान के कामों का अवरोधक है, यद्यपि ऐसा लगता नहीं है। सच यही है कि वह बुराई को रोके हुए है। कल्पना कीजिए कि उस समय क्या होगा जब पवित्र आत्मा इस उत्तरदायित्व से हट जाएगा और दुष्टों को अपना राज करने की अनुमति मिल जाएगी। शैतान का पूर्ण बोलबाला होगा। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि यह भले को प्रतिफल और बुरे को दंड का समय होगा। शैतान और बुराई करने वाले, उसके लाडले और खोए हुए मनुष्य परमेश्वर से कभी नहीं कह पाएंगे, तूने हमें कभी अवसर नहीं दिया। यदि तू हमें अवसर देता तो हम कुछ अच्छा कर पाते। परमेश्वर उन्हें कुछ समय के लिए अवसर देगा। यदि यह कुछ समय की बात ना होती तो कोई प्राणी नहीं बचता, जैसा प्रभु यीशु ने मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय के 22 पद में कहा था। पृथ्वी से निकलता वन पशु के बारे में आगे हम देखेंगे। वर्णन एक धर्म का अगुआ है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पहला पशु राजनीतिक अगुआ है। राजनीति का प्यादा और राजनीतिक शक्ति, उसका सामर्थ्य विश्वव्यापी होगा। अब हम दूसरे वन पशु को देखते हैं जो पृथ्वी से निकलेगा और वह एक धार्मिक अगुआ होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से दो सिंह थे और वह अजगर के समान बोलता था। यह वन पशु पहले पशु की तुलना में आसानी से पहचाना जा सकता है। पहले वन पशु को पहचानने के बाद इस दूसरे पशु को पहचानना अधिक कठिन नहीं है। पहला पशु समुद्र से निकलता है और दूसरा पृथ्वी से निकलता है। इन दोनों में अंतर क्या है? संसार के लोगों का प्रतीक समुद्र है। आज का विशाल जनसमूह उफनते हुए चंचल समुद्र के समान है। यह सदैव ही सच है। पृथ्वी जिसमें से यह दूसरा पशु निकलता है वह इसराइली परिवेश का प्रतीक है, और यह एक स्वाभाविक कल्पना है कि वह इसराइल से उभरेगा, क्योंकि अन्य किसी को वे मसीह नहीं मानेंगे, उसे उन्हीं में से एक होना है। लिखा है, उसके मेमने के से दो सिंह थे, यह उसके द्वारा मसीह की नकल का द्योतक है। पहला पशु ख्रिस्त विरोधी है और यह दूसरा पशु मसीह की नकल करता है, परंतु है यह भी ख्रिस्त विरोधी। वह मसीह होने का दिखावा करता है, उसके दो सिंह हैं जैसे मेमने के, परंतु वह वास्तव में भेड़ की खाल में भेड़िया है। वह इस मेमने की नकल करता है जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है कहता है। यह झूठा मेमना पाप कम नहीं करता, उन्हें बढ़ाता है। वह अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, परंतु ख्रिस्त विरोधी की इच्छा पूरी करने के लिए आया है। वह मसीह की झूठी छवि है। वह बहुत बातें करेगा, वह सबसे प्रेम करने की चर्चा करेगा, परंतु उसके स्वभाव में प्रेम नहीं होगा। वह भीतर से एक भयानक पशु ही होगा, जैसा पहला पशु है, संसार को भरमाने वाला। मत्तयी सुसमाचार 7:15 में प्रभु यीशु चेतावनी देता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यह दूसरा पशु झूठे भविष्यद्वक्ताओं का शिरोमणि है और स्वयं ही झूठा भविष्यद्वक्ता है। मसीह यीशु ने अकेले जो कुछ किया उसकी नकल करने के लिए दो मनुष्यों की आवश्यकता होगी, परंतु वे वास्तव में मसीह यीशु का कार्य नहीं करेंगे। जी हां, शैतान को मसीह के कामों की नकल करने के लिए दो मनुष्य चाहिए। मत्तयी सुसमाचार 24:24 में प्रभु यीशु कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमाए। यह झूठा भविष्यद्वक्ता पहले पशु के लिए वैसा ही होगा जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु के लिए था। कुछ लोगों के विचार में वह राजा शाऊल है, तो कुछ के विचार में वह यहूदा इस्करियोती है, परंतु मात्र कल्पनाएं हैं जिनका आधार निश्चित नहीं है। हम आगे देखते हैं वन पशु और नियुक्त अधिकार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 उसके 12 में लिखा हुआ है, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों में से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। दूसरे वन पशु को पहले वन पशु से अधिकार प्राप्त होगा, जिसके कारण वह उसका एक प्रकार से बंधुआ दास होगा, परंतु वह शक्ति और सामर्थ्य में उसके बराबर होगा। यह दूसरा पशु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 में व्यक्त बड़ी वेश्या का सर्वनाश करने का अभियान छेड़ेगा। यह बड़ी वेश्या नाम की कलीसिया होगी जो महाक्लेश के समय यहीं रहेगी। यूहन्ना उस कलीसिया को कलीसिया कहकर भी सम्मानित नहीं करता है, वह उसे वेश्या कहता है। सच्ची कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं है और वह मसीह की दुल्हन कहलाती है। यह आपके सामने एक विधर्मी कलीसिया का अंतिम अवशेष है जिसमें मानववाद व्याप्त है। यह झूठा भविष्यद्वक्ता संसार को उपासना का नया विषय देगा। पहला वन पशु, निरंकुश राजा, पाप का पुरुष, अंतिम विश्व शासक। आप इसे दानियल नबी की पुस्तक 11 उसके 36-39 में पढ़ सकते हैं, मती 24:24 में और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसके 3-10 में। अतः यह दूसरा पशु पहले पशु को उपासना के स्थान पर सम्मानित करेगा। लिखा है, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि पहला और दूसरा पशु दोनों ही चंगा करने वाले और आश्चर्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं। यह एक बड़ा झूठ है, संसार में आने वाला एक महान भ्रम है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा हुआ है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। यह झूठा भविष्यद्वक्ता चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। हमारे प्रभु यीशु ने इस झूठे भविष्यद्वक्ता के विरुद्ध हमें पहले से ही चेतावनी दे दी है। उसका भ्रम है कि वह स्वर्ग से आग गिराने में एलियाह की नकल करता है। वह मिस्र के राजा के जादूगरों के समान होगा, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं। तब फिरौन ने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। वे चतुर जादूगर थे और मेरे विचार में उन्हें शैतान से अधिकार प्राप्त था। अंत समय में आने वाला यह पशु भी शैतानी शक्तियां रखेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने विशेष करके कहा था कि उसका प्रयोजन आग से नहीं है, परंतु यह झूठा भविष्यद्वक्ता एलियाह की नकल करेगा। मेरे मित्रों, यह झूठा भविष्यद्वक्ता आग की झील में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय के 20 पद में हम इसे पढ़ते हैं, परंतु तब तक वह आग से खेलेगा। उसके इस भ्रम के कारण संसार बहकावे में आ जाएगा, परंतु परमेश्वर के चुने हुए धोखा नहीं खाएंगे। यह झूठा मनुष्य पाप के पुरुष की मूर्ति बनवाएगा। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि प्रभु यीशु ने अपना शारीरिक प्रतिरूप कहीं नहीं रहने दिया था, परंतु इस ख्रिस्त विरोधी की मूरत यरूशलेम के मंदिर में रखी जाएगी। मेरे विचार में यही वह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 15 पद में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को जिसका चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। यही वह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है जो आने वाली है। यद्यपि हम नियम निर्धारित नहीं कर सकते, परंतु यही वह घृणित वस्तु है, ख्रिस्त विरोधी की मूरत, पहले पशु की मूरत। आगे हम देखते हैं, वन पशु संसार में भ्रम का जाल फैलाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय के 15 से 17 पद में लिखा हुआ है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो अन्य कोई लेन देन न कर सके। लिखा है उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। यह मूर्ति अलग ही है। यशाया और अन्य सब भविष्यद् वक्ताओं ने कहा है कि मूर्तियां बोल नहीं सकती। पौलुस भी यही कहता है, परंतु यह मूर्ति भिन्न होगी जो बोलती होगी। मेरे विचार में वे संसार के सब वैज्ञानिकों को बुलाकर इस मूर्ति को दिखाएंगे। वैज्ञानिक कहेंगे कि वे इस मूर्ति के विषय कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं समझ सकते। यह मूर्ति चमत्कारी है। यह एक कारण होगा कि संपूर्ण संसार ख्रिस्त विरोधी की उपासना करेगा। अब वह धर्म और व्यापार को जोड़ेगा। आपको व्यापार करने के लिए पशु का चिन्ह चाहिए होगा। यूहन्ना के युग में सैनिकों पर उनके प्रधान सेनापति की मुहर होती थी और दासों पर उनके स्वामी की। इसी प्रकार मंदिर के सेवकों पर वहां की देवी या देवता की मूरत की छाप होती थी। यूनानी शासक तोलमी किलोपाथर ने सिकंदरिया के सब यहूदियों पर डायनोसियस का चिन्ह, सिरपेचा का पत्ता गुदवाया था। आज तरह तरह के कार्ड हैं, जिसके विषय में एक समाचार पत्र में लेख था कि इतने ढेर कार्ड लेकर घूमने की अपेक्षा सरकार हमें बहुउद्देश्य अंक क्यों ना दे, हमें दे दे कि हम उसे अपने माथे पर लिखवा कर घूमें और इन विभिन्न कार्डों से मुक्ति पाएं। मेरे प्रियो, आप मुझे गलत न समझें, यह भविष्यवाणी की पूर्ति तो नहीं है, परंतु यह अवश्य प्रकट करती है कि भविष्यवाणी पूरी कैसी होगी। पशु का चिन्ह क्या होगा हमें बताया तो नहीं गया है, परंतु अनेक टीकाकार हमें बताने से चूकते नहीं है। और हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं वन पशु उपाधि, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 18 पद में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। लिखा है ज्ञान इसी में है। इस पद पर सदियों से की गई कल्पनाओं की भूल भुलैया में यह बात हास्यजनक प्रतीत होती है। मूल भाषा यूनानी में इस संख्या का क्रम अति सुंदर है, 666। इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान है, परंतु हम इसे यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि पशु की प्रकट संख्या और उसका अर्थ उसके आगमन की प्रतीक्षा में है, और मेरे विचार में वह अब तक प्रकट नहीं हुआ है। यह अंक अनेकों के लिए एक पहेली का खेल बन गया है, परंतु मेरे प्रियो, आप महाक्लेश के आगमन तक उसे जान नहीं पाएंगे। मेरी राय में हमें इस अंक से ख्रिस्त विरोधी को पहचानने में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, और मेरा मानना है कि हम प्रभु यीशु की चर्चा करें, जिससे कि हम महाक्लेश में यहां रहने वालों की संख्या कम कर सकें। महाक्लेश में रहने वाले तो निश्चय ही पशु का अंक जान लेंगे। मैं पशु का अंक जानने का इच्छुक नहीं हूं, और मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि मैं उस समय यहां नहीं रहूंगा, और मैं अत्यंत आभारी हूं कि मैं प्रभु यीशु को जानता हूं। मैं तो ख्रिस्त विरोधी के साथ समय गंवाने की अपेक्षा प्रभु यीशु को अधिकाधिक जानना चाहूंगा। मैं पौलुस के साथ कह सकता हूं, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। जी हां, हमारे लिए संदेह रहित और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहला पशु एक पुरुष है। मुझे इससे एक शिक्षा मिलती है कि मनुष्य पर विश्वास करना उचित नहीं। यर्मिया नबी की पुस्तक 17 अध्याय उसके 5-8 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य का यह अंश मुझे लेश मात्र भी आतुर नहीं करता कि पशु का अंग क्या है, वह स्वयं क्या है, या उसके विषय अन्य किसी बात में रुचि है। मुझे तो केवल प्रभु यीशु को अधिकाधिक जानने में रुचि है, क्योंकि मेरी योजना उसके साथ अनंत जीवन बिताने की है, क्योंकि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया और उसके अनुग्रह से मैं उसकी उपस्थिति में वास कर पाऊंगा, अपने कर्मों या योग्यता के द्वारा से नहीं। मैं जानता हूं कि मैं निर्बल और कमजोर हूं और सिर्फ उसी के द्वारा मैं उसके पास पहुंच सकता हूं। मेरे प्रियो, आप किसके साथ समय बिताना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ या संसार के साथ, शैतान के साथ? निर्णय आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में फिर से आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मुझको मसीह के आने का इंतजार है, मुझको मसीह के आने का इंतजार है। ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है, ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है। मुझको मसीह के आने का इंतजार जिसने दी हजार खुशियां, टूटे हुए दिलों को हजार खुशियां उसके दीदार के लिए दिल बेतरार है, उसके दीदार के लिए।